प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
कि परमात्मा ने कहा कि वहां से पैदल आते या गाड़ी जोड़ के लाते कार मारते पाप तो वही लिखे जाएंगे ना, जिस उद्देश्य से जा रहे हो। तो वहां से यहां तक आपने कितने कदम रखे, पृथ्वी ऊपर पग जो धार है करोड़ जीव एक दिन में मारे, पृथ्वी के ऊपर पैर रखने मात्र से एक दिन में करोड़ों जीवों को मार कर घूम फिर कर तुम विश्राम लेते हो और फिर कहते हो पाप नहीं करते। तो आप कहां से चले थे, बांधोगढ़ से यहां तक आने में एक हफ्ता लगा होगा आपको कांची, तो इस वहां से यहां तक आने और जाने में कितने पाप आपने कर दिए, जीव मार दिए। पृथ्वी ऊपर पग जो धार है करोड़ जीव एक दिन में मारे, अब क्या बताते हैं परमात्मा, ब्राह्मण से सत्य जो हो ही जल स्नान करते हो सोई चौके कर्मी किट मर जाई सूक्ष्म जीव जो दर्श नाही, हरी भांति पृथ्वी के रंगा अंत कोट जीव उड़े पतंगा। कुछ ऐसे हैं जो पृथ्वी के रंग के जीव हैं, कुछ ऐसे हरे हरे घास में हरे जैसे उस घास जैसे होते हैं और वो भी तुमसे मर जाते हैं। तारक मंत्र कोट जपा ही वह जीव हिंसा उतरे नाही, और तुम्हारे जो मंत्र है ना जो तुम जाप करते हो राम कृष्ण हरे हरे राधे श्याम कहते ना करोड़ जाप कर लियो वह जीव हिंसा इनसे नहीं कट सकती, वो मंत्र मेरे पास है सतनाम उससे कटेंगे वो पूर्व के पाप भी तेरे। तारक मंत्र कोट जपाही वो जीव हंसा उतरे नाही, पृथ्वी ऊपर पग जो दारे करोड़ जीव एक दिन में मारे, करे आरती संजम सेवा या अपराध न उतरे देवा। अब जैसे तुम आरती करते हो घंटी बजाते हो कहते इनमें भी पाप होते हैं, जब घंटी बजाते हो उसमें भी और घंटी का डंडा मारते हो वहां भी जीव होते कण छोटे छोटे अणु, यानी कोई भी तुम्हारा कर्म पाप से रहित नहीं है और तुम्हारे पास वो साबुन और जल है नहीं जिससे आपका रोज जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं मैला हो जाता साबुन और पानी से धो लेते साफ हो गया, तो आपके मंत्र तो साबुन पानी वाला भी काम ना करते। वो सच साधना जब तक नहीं मिलेगी डेली के जो कर्म होते उनको भी आरती सेवा सिमरण पूजा हम करते हैं उसमें भी वो डेली भी खत्म होते हैं जो हो भी जाते हैं। तो ठाकुर घंटा पौन चकोरे कोट जीव सूक्ष्म सिर दौड़े, ताल मृदंग और झालर बाजे कोट जीव सूक्ष्म तांसाजे, धूप दीप और अर्पण अंगा कोट जीव जांजरे विहंगा, एति हिंसा करत हो सारे कैसे दीदार करो कर तारे, स्वामी सेवक बूढ़त बारा मार पड़े दुर्गा जमजेरा, ऐसा ज्ञान अचम सुनाऊं पूजा अर्पण सभी छुड़ाऊं। परमात्मा कहते मैं ऐसा ज्ञान सुना दूंगा गजब का कि ये सब जो तुम कर रहे हो ना इससे सब पीछा छूट जाएगा, जो साधना करते हो व्रत रख लिया तीर्थों पर जाना फलाना करना ये सब छुड़वा दूंगा, ऐसा ज्ञान अचंभ सुनाऊं पूजा अर्पण सब छुड़ाऊं, झाड़ी लंगी कर तो हमेशा सूक्ष्म जीव होत है निशा। यानी सब प्रकार के बता रहे हैं कि तुम खाते पीते हो खानदान में दमन प्राणी और कैसे पाओ बोक्स निशानी, तुम फ्रेश होने जाते हो उसमें पाप हो, पेशाब करते हो उसमें पाप हो, बना खाना बनाते तब पाप हो, और उधर से कहते हो पाप नहीं करते। यानी इतना लेखा दिखा दिया परमात्मा ने, कलेजा हल गया उसका धर्मदास का। और जब परमात्मा ने इतना कुछ कहा वो फिर भी ना मान्या। और जैसे परमात्मा बताते हैं तीर्थ पाठ चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उड़ जाड़ी, जैसे तीर्थों पर जाते हो ना तुम्हारे तो असंग जन्म के पाप इकट्ठे कर लिए, सारे भोगने पड़ेंगे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उर्झाणी, जा तीर्थ पर कर है दानम आवत जात जीव मरे अरबन। अब दान कर तुम तीर्थ पर जाओ हो, आन जान में पाप ने इकट्ठे कर लिया, पुण्य करके आयोगे को धर्म तो घर कर लो, गांव में कर लो, किधर भंडारा करके वो तीर्थ पर गणा धर्म होगा। आवत जाते जीव मरे अरबाना, अरबों जीव मार देते हो। पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया है। कहते पर भी लेन जाते हो कहां कहां पाप इकट्ठा करने, और हम ज्ञान बताते हो उसको कोई नहीं सुन रहा है। पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, गोते गोते पढ़े भारम गंगा जमुना गए केदार। जितने गोते मारो ना उसमें उतने पाप में ग्रस्त होते जाते हो तुम, गंगा जमुना चाहे केदारनाथ सजा लियो। लोहा गर पोकर की आशा अंतकोट जीव होत विनाशा, पाती तोड़ चढ़ावे अंदेश जिनके कदे ना कट है फंदे। गंगा काशी गया प्रयागु बहुर जाए द्वारका ले दागु, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा ऐसा ज्ञान देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम जो जीव बर्मा वे आचार विचारम। परमात्मा कह रहे हैं कि जो कहते हैं ना तीर्था पर जाओ अर की पैड़ी पर जाओ वहां पर भी लगे, कहते ऐसे ऐसे गुरुओं की गर्दन मारम, कहते उनका तो जूते मारे। गरीबदास जी ने बताया सुख संवेद में कि झूठे गुरु के लीतर लावे और गर्तन काट घसीटे, और वाके पीटे पाप नहीं है उसने जरूर पीटे। तुम ना पीटियो किसी ने तो बस इस कहन की बात है, जैसे कह देते ना एक कहने का भाव यह है कैसे नालायक तो बचकर है, पीटा छेती नहीं करते। संत वैसे एक उदाहरणार्थ कहते हैं, जैसे कोई बच्चा शरारत कर रहा होता है उसने जो कहते दूर मर ले तू, मर ले का मतलब ना तुम मरिए जा सुसाइड कर ले, उसने कहा दूर बैठ जा। तो इसी तरह ये संतों की जो वाणी है वैसे वो किसी उद्देश्य से कही है, उनका अर्थ ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं झूठे गुरु के लीतर लावे हर गर्तने काट घसीटे, अरवा के पीटे पाप ने उसने जरूर पीटे। कहने का भाव उतना निकम्मा है आप क्रम बिगाड़े, और तुमने गुमराह किया कर रहा है, इतने अनमोल जी उनको नाश करता है। तो यहां क्या बता रहे हैं कि जैसे ऊपर बताया है ना, भाई लोहा गर पो कर्म जावे वहां जावे, फलान पर भी लेन जा, गंगा जमुना पर नहाने जा, केदारनाथ पर जावे, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा, जा गुरुआ की गर्दन मारम जो जीव भरमावे आचार विचार। जो इस तरह की बकवाद दम उड़ जा रहा है वो निकम्मा आदमी है, वो संत नहीं है। फिर क्या बताते हैं, पिंड पे होहा बोतक जाही बद्री बोध सुनो चितलाई। कोई पिंड पे होहा में जाके पिंड भरवाते हैं, कोई बद्रीनाथ में जाते हैं। पिंड पे होहा बोतक जाही बद्री बोध सुनो चितलाई, सरजू कर स्नान हजूमम अंत कोट जीव गाली धूमम। पिंड प्रधान मुक्ति ना होई भूत जुनी छूटत है लोई। अब परमात्मा बता रहे हैं, जैसे धर्मदास जी पूछ रहा था जी जैसे पिंड दान करते हैं उससे लाभ होता है, परमात्मा बोले भाई क्या लाभ हुआ, पिंड दान कर दिया भूत दुनी छूट गई, गधा बन गया तेरा पिताजी, खाक कल्याण करा दिया उसका। भूत जुनी ता छूटे है पिंड पर दान करते, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। कहते भूत जुनी ता छूट गई, क्या फायदा किया, भगवान मिल गया उसको, फिर गधा बन गया अगले दुनी में। तो ये है तुम्हारा ज्ञान, और हम जो बता रहे इसे दोनों संकट मिटेंगे। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। तो पुण्यात्मा आज तो इतना ही सत्संग करते हैं, क्योंकि ये जो दास ये कथाएं परमात्मा की पूरी पांच पांच दिन में होया करती, सत्संग शुरू में करते थे, फिर बीच में जब पता चला कि परमात्मा को उजागर करना है, पहले भगवान इनके हृदय में जचाना है, तभी तो मानेंगे कबीर इज गॉड, तभी इस वाणी को सच्ची मानेंगे। तो अभी तो शुरुआत है, ये तो एक हफ्ते में जाकर पूरा हुए दोनों का प्रसंग, और सारा सबको समझाने के लिए है आधार से। फिर आगे आने वाले समय में ऐसा ही किया करेंगे, एक जनता जाग जा सब परमात्मा पर लाग जा, या सत्यनारायण कथा जो दास आपको सुनाया करेगा। सत साहिब अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिन्होंने परमात्मा से लाभ प्राप्त हुआ, उससे आपको दृढ़ता आएगी। नए भक्त आते हैं, लुटे पिटे आते हैं, पुणात्माओं जहां जहां भी आप गए हो आपने खूब पता वहां क्या व्यवस्था थी, और यहां का भी आपको मालूम है यहां क्या व्यवस्था है। यहां भगवान आपके बाप का घर है, और जहां आप जाते थे वहां किसी दूसरे के बारे में जाते थे, वहां अपने पैसे से खाना, अपने पैसे सब कुछ करना। देखो जो पैसा आप यहां दान करते हो ये पैसा आपका है, आपने जो दान कर दिया ये आपका है, जो आपको हजार गुना मिलेगा आगे जाके, और इसमें यू फिर आपका नहीं रहा, आपका है आपका नहीं रहा, आपने दान कर दिया भगवान को, आपका नहीं रहा, ये हो गया भगवान का, और उसके बदले में आपको भगवान ने दे दिया एक हजार गुना, आपका नहीं रहा, और वास्तव में जो दान आपने कर दिया वो आपका। ये किस, ये दोनों बात कैसे, जैसे आपने 10 लाख रुपए लगा दिए कोठी बनाने में, वो आपका नहीं है, आपने कार ले ली 2 लाख की 4 लाख की, वो आपकी नहीं है, आपने जो दान कर दिया ये आपका, ये आपको आगे मिलेगा, और ये यहीं बाकी यहां छोड़ के जाओगे। तो कहने का भाव ये है कि जो आप दान यहां करते हैं ये आपका है, आपको आगे मिलेगा, ये आपका नहीं रहा, क्योंकि आपको तो इसके बदले भगवान हजार गुना देगा, और फिर उससे अपने आपके भाई बहन जो यहां आते दुखी सुखी सबको फ्री व्यवस्था की जाती है। तो ये आपका घर है, और यहां कितना सुख मालिक देता है, कितने दुखी आते हैं यहां आते, सारे दुख भूल जाते हैं, सब चीज समय पर मिलती है, सारा बैठने का उड़न का खाने का पीने का, आपके भाई बहन जो पुराने हैं आपकी कैसी सेवा करते हैं, घर का कोई घर का सदस्य नहीं कर सकता इतने दिन इतनी सेवा। तो इससे भी आप हिसाब लगा लो आप कहां आगे हो। तो इससे आपको दृढ़ता आएगी, जिन भक्तों पर परमात्मा ने मेर बख्शी आप पे बख्शेंगे, जब इन पे बख्शिए तो आप कौन से उसके बच्चे नहीं होगे, उसकी मर्यादा में रहोगे। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगेगी तेरा बाना, जब तक मेरी शरण मेरी मर्यादा में रहोगे काल का अटैक नहीं होने दूंगा। हम गलती करते हैं मर्यादा तोड़ के, उसमें काल का दाव लग जाता है, जब मंत्र खंड हो गया भगवान का हाथ हट गया। तो पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, जम किंग कर चंपनी थरे उधर जाएंगे वंश। और पंजा दस्त कबीर का भगवान का पंजा रहेगा कैसे, जब लग हंसा हमरी आना, जब लग आप मेरी मर्यादा में रहोगे और मेरे अतिरिक्त किसी में सपने में भी इच्छा नहीं रखोगे किसी की, तो मेरी जब मर्यादा में हो तब तक फिर काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। तो ऐसे मर्यादा रखते हैं उनको क्या क्या सुख हुए वो आपको अब सुनाएंगे, आप भी ऐसे रखना आपका भी कल्याण होगा।
नमस्कार सर।
सत सहयोग जी,
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
हुक्मा दास
सर। कहाँ से आए हैं आप?
ग्राम बनवाड़ा, तहसील डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान से आए भगत जी।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
सत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं राधा स्वामी राजेंद्र सिंह जी की शरण में था, वहाँ की भक्ति दिए हुए पांच नाम का जाप करता था भगत जी।
तो इन पांच नाम, ये जो पांच नाम संत राजेंद्र सिंह जी ने आपको दिए थे, इनसे इनकी भक्ति करते हुए आपको क्या लाभ मिला?
इनकी भक्ति हुए करते भगत जी लाभ तो कुछ नहीं मिला, बल्कि नाम लेने के एक साल बाद में मेरी बच्चे शांत हो गई थी, तो लाभ तो कुछ नहीं मिला। उसके बाद जो मेरे को भूत प्रीत का जो बीमारी थी वो जरूर 5-4 साल तक मेरी वो नहीं हुई थी। उसके बाद भगत जी 2007 को मैंने वापस वहां आश्रम गया था राधा स्वामी दिल्ली, तो जाने के बाद में भगत जी मेरी जो बीमारी थी वो वापस चालू हो गई थी। उसके बाद भगत जी मैं 2-3 साल तक से वो बीमारी से परेशान था बहुत ज्यादा।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप?
भगत जी परम संत सतगुरु रामपाल जी की शरण में मैं ऐसा आया, जब मेरी ये भूत प्रीत की बीमारी थी तब मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसमें पढ़ा था मैंने, तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारे गुरुजी पहले वाले बताते थे कि भाई सोए गुरु पूरा कावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, तो मैंने ये सोचा कि इसमें दो अक्षर का भेद तो बता नहीं रहते, ये रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इसमें दो अक्षर के भेद है जो सतनाम है, तो इनकी भक्ति करना चाहिए। तो भगत जी फिर मैंने वो बीमारी से बहुत परेशान था मैं, झाड़े बूझ वालों से और से बहुत परेशान हो गया, तो भगत जी मेरे को उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर अंत में मैंने भगत जी एक जो हमारे पास में ही है वो डोर ताबीज करती है उसके पास गया, एक साल तक भगत जी मैं उसके पास फिरा, तो वो बोली आपके ऊपर बहुत बड़ी शक्ति का है जो मेरे बस में नहीं आती है, वो मेरे से उसका ताबीज नहीं बन सकता है। एक साल तक तो मैं फिरता फिरता परेशान हो गया भगत जी, उसके बाद मेरी हालत ऐसी हो गई कि जैसे मरने वाला हो। उसके बाद भगत जी मैंने उसको जाके बोला भाई जो बता जो करना है जो मेरे ताबीज बनना, नहीं तो मेरी हालत खराब हो रही है। वो बोली भगत जी आपकी मियाद खत्म हो गई है, एक महीने और जियोगे और उसके बाद आप मर जाओगे। तो फिर भगत जी उसके बाद मैंने एक दिन घर पे सोते सोते सदगुरु रामपाल जी महाराज को याद किया, याद करके वो कि ज्ञान गंगा पढ़ के उसमें से लिखा हुआ कि घर में अगरबत्ती नहीं करना चाहिए, किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो उसी दिन से भगत जी मैंने ये घर में अगरबत्ती करना बंद कर दिया और दीपक किया घी का, और उसी समय मैंने किया गुरु जी यदि आप परमात्मा हो तो मेरी ये बीमारी आप कष्ट दूर करो, तब मैं आपकी शरण में आ सकता हूँ, नहीं तो भगत जी मेरे से नहीं आ जा सकता है। ऐसे हुई। उसके बाद भगत जी मेरे को ये बात धीरे 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 दो चार दिन हुए, तो फिर पहले वाले जो राधा स्वामी पंत के गुरु थे वो मेरे को दर्शन देने लगे, कभी बोलते हैं कि ऐसा वहां नहीं जाना है तेरे को, वहां ऐसा नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो कुछ नहीं है, वैसे नहीं है। तो भगत जी मैंने ये सोचा कि जब 10 साल में यदि मेरे को कुछ दर्शन नहीं दिया, आज ये दर्शन क्यों दे रहे। उसके बाद भगत जी मैंने जब एक महीना हो गया भगत जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, तैयार हो गया मैं यहां आने से पहले। उसके बाद भगत जी यहां आने की इच्छा फिर भी नहीं हुई, काल का बहुत बड़ा जाल है राधा स्वामी के, वो सब मेरे को डरा रहे थे तो मैं नहीं आ पाया। उसके बाद भगत जी मेरे 6 साल से बच्चे दो बच्ची थी, उसके बाद बच्चा बच्ची नहीं हुआ था। सभी से पूछा तो ये बोले कि आपके अब कुछ नहीं होगा, आपके भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने एक दिन सदगुरु रामपाल जी महाराज के उसे घर पे प्रार्थना की, हे भगवान यदि आप परमात्मा हो मेरी एक कष्ट दूर कर दिया तो ये भी दूर आप ही करो भगवान, मेरे को एक बच्चा दे दो तो मैं आपकी शरण में जल्दी से आ सकता हूँ, नहीं तो भगवान ये काल का बहुत बड़ा जाल है। उसके बाद भगत जी उसी महीने से मेरी पत्नी के गर्भ रह गए भगत जी। उसके बाद में 8 महीने के बाद में संत रामपाल जी महाराज के यहाँ शरण में आ गया।
जैसे आप बता रहे हैं कि पहले आप राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपको भूत प्रेत के साये ने घेर लिया, और फिर आप झाड़ फूक वालों के पास भी जाते थे तो उन्होंने कहा था कि आपकी जीवन सिर्फ 1 महीने का ही है। उसके बाद आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली, उसे पढ़कर आपने सिर्फ संकल्प मात्र से ही सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको स्वस्थ किया और आपको बच्चा भी दिया। ये लाभ तो सर आप बता रहे हैं कि आप संकल्प मात्र से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले ही आपको सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिए। उसके बाद सर आप यहाँ आए, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको सतभक्ति दी, तो जो सतभक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दी है उस भक्ति से आपको अन्य क्या लाभ मिले।
उसके बाद भगत जी जब मैं यहाँ आ गया, नाम ले लिया, तो मेरे घर वाले श्री भक्तमती जी ने उपदेश नहीं ले रखा था, वो बोलती थी कि मैं उपदेश नहीं ले पाऊंगी क्योंकि आपके गुरुजी तो बहुत ज्यादा नियम बताते हैं। तो भगत जी उस समय मैंने ये सोचा कि यदि मैं एक भक्ति करूंगा ये नहीं करेगी तो जो ये मालिक ने जो बच्चा दे रखा है ये भगवान की लीला है, उन्हीं ने दिया है, तो यदि ये नहीं जाएंगे तो ये बच्चा भक्ति नहीं कर पाएगा। तो भगत जी मैंने उसी दिन एक दिन गुरु जी से प्रार्थना की कि हे परमात्मा यदि इन भक्तों को आपकी शरण में ले लो तो भगत जी ये बच्चा भी आपकी शरण में आएगा, नहीं तो भगत जी ये नहीं आ पाएगा। उसके बाद उसी दिन मैंने दंडवत प्रणाम करके ज्योत की, उसी दिन रात को मेरे को सपने में गुरुजी आए और आके ये बताए कि बेटा ये सब कुछ मान जाएंगे और आप ध्यान रखो, इसको एक पाठ बोल दो और आप पाठ करवा लेना और ये आपके जल्दी मान जाएंगे और आ जाएंगे। उसी समय उसी को बहुत ज्यादा भगत जी बच्चे को उल्टी और दस्त होने लग गई, तो 2-3 दिन तक उल्टी दस्त बहुत ज्यादा हो रही थी। तो भगतमती जी ने बोला कि डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। मैं बोला डॉक्टर को दिखाने से कोई फायदा नहीं है, ये तो परमात्मा का दिया हुआ अंश है, उन्हीं की शरण में जाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये नियम नियम से नहीं रहेगा। तो बोला भगत जी, मैं बोला ठीक है भगत जी नहीं रहेगा आप डॉक्टर के पास चलिए। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया, टेबलेट दी, शीशी दी, उसे भगत जी जैसे ही वो दिया जैसे ही ज्यादा ज्यादा उल्टी टट्टी होने लग गई। फिर मैंने ये प्रार्थना की, गुरु जी ये तो मामला बहुत खराब हुआ है। फिर प्रार्थना की तो गुरु जी कि इनको जल्दी से जल्दी बुला लो। उसी दिन से भगत जी, उसी दिन उनको रात को ये हुआ कि सवेरे उठते मेरे को बोला अब की बार आप गुरु जी कब जाओगे। मैं बोला गुरु जी को वैसे तो महीने से जा रहा हूं मगर मुंडा सामने ही सत्संग आ रही है इसमें चले जाएंगे। बोला ठीक है भगत जी हम भी नाम उपदेश लेंगे। उस समय भगत जी जब मैं घर से निकला तो उल्टी दस्त बच्चे को इतनी हो रही थी कोई सीमा नहीं। और जब डेगाना आके मैं बरवाला का स्टैंड से टिकट कटवाया, टिकट कटाते ही ऐसे उल्टी दस्त खत्म हो गई जैसे कोई जादू किया हो। उसके बाद उन्हीं को जज गई कि कुछ न कुछ शक्ति तो वहां है। उसके बाद भगतमती जी आए, बच्चे ये दोनों बच्चे आए और बच्चे आए और उसी दिन से सदगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद भगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने जो लाल तेल होता मालिश करने का वो उन्होंने बच्चे को पिला दिया। मेरे को मालूम नहीं था तो वो उन्होंने पिला दिया तो वो बोला कि अब क्या होगा अब क्या होगा। मैं बोला कुछ नहीं होगा, जो होगा जो परमात्मा ही करेंगे। वो उसके बाद वो पिलाने से बाद हमारे कुछ भी नहीं हुआ और हम बहुत अच्छे हैं, भक्ति करते हैं पूरे परिवार के और एकदम शरीर से सुखी हैं। सब कुछ दया परमात्मा की हमारे ऊपर।
सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भगत जी नाम लेने के बाद जब मैं किशनगढ़ में काम करता था उसी दिन मेरे को एक फैक्ट्री में काम करता था तो वहां से मैं गिर गया। वहां गिर गया तो गिरने के बाद भगत जी ऐसा हुआ कि वहां सब कुछ देखा तो मेरे को यही बोले कि ये तो गुजर गया है, ये तो मर गया, ये तो मर गया। तो भगत जी मेरे को तो पता नहीं था क्या हुआ। उसके बाद एक पूर्ण घंटे तक मेरे को होश नहीं आया, क्या मालूम क्या हो गया, यही बोल रहे थे कि मर गया मर गया। तो भगत जी उसके बाद मेरे को क्या मालूम परमात्मा ने कैसे जीवित किया, मेरे को हॉस्पिटल में ले गया। तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी, ये गले की हड्डी है, ये टूट गई है। तो भगत जी मेरे को कुछ होश आया तो मैं परमात्मा से अरदास की, है परमात्मा रीढ़ की यदि मेरी गर्दन की हड्डी टूट गई है तो मैं कैसे खड़ा हो पाऊंगा। उसी के बाद वो डॉक्टर बोला कि ठीक है इनका सीटीजन कर लेते हैं। सीटीजन किया तो उसमें रीढ़ की हड्डी डॉक्टर बता रहे थे कि टूटी हुई मिली। उसके बाद मैंने प्रार्थना की गुरु जी से तो थोड़ी देर बाद में डॉक्टरों को क्या मालूम क्या हुआ, परमात्मा बुद्धि चेंज किया, बोला कि इसका अक्षरा कर लेते हैं। अक्षरा करने के बाद भगत जी मेरी उस अक्षरे में एकदम बिल्कुल सही हड्डी आ रही थी। तब डॉक्टरों ने बोला कि ये क्या, आप कौन से इष्ट की पूजा करते हो क्या है। फिर वो मेरा सेठ था वो बताया कि ये कबीर साहब की शरण में है। तो ये फायदा मेरे को उपदेश लेने से बाद में मेरे को दूसरी बार जीवन दान मिला भगत जी। और भगत जी भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, राधा स्वामी वालों को सबको, कि जल्दी से जल्दी सतगुरु रामपाल जी महाराज जो बरवाला में आए हुए हैं परमात्मा, उनसे उपदेश लीजिए और अपना कल्याण करवाइए।
जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मधुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानिर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार निमद्यतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गण नायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्वोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समरथ जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा 88 उतरे बहुत जल पारा कट है इनकी फांसी। ग्रीब कर जोरों विनती करूं दुरू तुरुण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं हूं कोटि कोटि पूर्णम। चरण कमल में राखियों में बांधी जन गुलाम। कुत्ता हूं गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी ही जाखें चोभा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सुख। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है याम मीन न मेखो। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं हूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिल लेंगे पूछेंगे कुशलोत। आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम जैसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत अधिक पुण्य उदय होते हैं वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहां रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त हैं और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त है। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं। गर्मी और सर्दी वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये तैसे बनते रहेंगे और हम मनुष्य हैं मनुष्य ही बनते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं। ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको यह ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला। और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की, अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी समुदाय में जन्मा है उसी कर्म को उसी साधना को सत मान रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया, पहले तो आप जी को ये प्रूफ कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है। इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा, कबीर इज गॉड। हु कबीर, कौन कबीर, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ, अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धानक रूप में दुलाहे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं और सबके पालक हैं और वो हमारे सबके पिता है। नानक साहब जी कहते हैं, भाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाणा भोतावार, ये धानक रूप रहा करता है। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिन जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा क्यों कर मौंडा पावे। फिर 721 प्रश्न पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अरज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहिब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया, सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाहु अकबर कहा है। अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब। तो कहने का भाव यह है कि वो कबीर इज गॉड। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सचिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान कहलाता है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, गीता ज्ञान दाता कहते हैं, और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान और परमात्म ज्ञान का और तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और इसमें ये इनकम्प्लीट है। परमात्मा ने 5 वेद दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को, इसने एक 5वां वेद नष्ट कर दिया, हम तक आने नहीं दिया, छुपा दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को समझने के लिए हमने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ता है। तो ये सदग्रंथ ये कह रहे हैं कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, और वो तत्वदर्शी संत वो ज्ञान रखता है जो स्वयं भगवान आकर बताता है, वो सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है। तो उस ज्ञान के अंदर ये तो प्रमाणित हो चुका है, उस ज्ञान के आधार से दास ने आपको सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा कैसा है, कहां रहता है, वो क्या करता है और वो कैसे प्राप्त होता है। तो अब हमने उस अध्यात्म ज्ञान को समझना है। अपनी विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही शिरोधार्य शास्त्र माना जाता है और सत शास्त्र कहलाता है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान बोला था उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया था कि हम भूल गए थे कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। केवल पुस्तकों में पढ़ा करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ ली, ठीक है, दोहे इसलिए पढ़ा करते थे कि वो हमारे एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ अंश हमने लिखना पड़ता था। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हुआ ये दास, तो पता चला ये कबीर साहब कवि ही नहीं थे, ये परमेश्वर भी थे। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तो पेंडा पंथ पकड़वो, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो, इन पंडितों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को, ये कख भी नहीं जानते, कह खै भी नहीं जानते अध्यात्म मार्ग। आचार्य और शंकराचार्य जितने मंडलेश्वर आप जी के धर्मगुरु हैं, ऐसे ही मुसलमानों को कहा करते ये मुल्ला काजी है, और जितने भी पीर ये अपनी कुरान शरीफ से भी परिचित नहीं है। तो इस बात से उस समय के सभी वो नकली धर्मगुरु परमात्मा का विरोध किया करते थे और उस परमात्मा को हमारे हृदय से कति गिरा दिया था, ये कह करके कि कबीर साहब तो अशिक्षित हैं, कोरी झूठ बोलते हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा सबसे कहिए वो राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का वर्म नसाओ, भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का वेद न जाना, अब मैं तुमसे कहूं चताई तेरे देवन की उत्पत्ति वाई, तेरे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे जन्म हुआ, मां अष्टंगी पिता निरंजन ये जुम दौरुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा, देवी को तुरंत धर खाए पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अष्टंगी और काल अब दो मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में, तीन गुण कौन? रज गुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। इन तीनों देवताओं की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, और कहें कबीर निज नाम बिना, यथार्थ मंत्र के बिना तुम कैसे उतरो पार। और तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न हो मुक्ति। जिस परम पिता को ये अज्ञानी एक संस्कृत भाषा के ज्ञाता कहा करते, वो अविद्वान है, जुलाह है, शूद्र है, मूर्ख है, इसने बोलना भी ना आता, भाषा का उच्चारण भी ठीक नहीं, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में ये आलोचना करता है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, तीन गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है या ये समझ में ना रही थी इनका आज तक, तो परमात्मा ने बताया कि रज गुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव कहा वेरे, चौथे पद का मरहम न्यारा, कोई तत्व दर्शी बता वेरे। अब तीन गुण कौन थे? भगवान ने 600 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया कि तीन देव, तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। और हमारे दादे परदादे इन्हें पूज पूज के मर गए, तो क्या मुक्त हुए? वो नहीं हुए। आपको प्रमाण दिखाते हैं, पहले आपको ये सिद्ध करते हैं ये तीन गुण क्या है। देखिएगा अपने ही सदग्रंथों से। अब देखो श्रीमद देवी भागवत से हम सिद्ध करते हैं कि तीनों गुण कौन है। देखिएगा ये है श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक। ये छपी कहां से है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ है और पांचवें अध्याय का हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए? अब क्या बता रहे हैं, फिर हम संस्कार देखेंगे। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, आप यदि हमारे ऊपर सदा मेहरबान बताते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तो कथम अहम विहित च, क्यों मैं बना दिया तमोगुण है तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी। अब एक और पुराण से सिद्ध करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। देखिए यह है मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 22-23 पृष्ठ पर दिखाएंगे, ये 122 पृष्ठ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे मार्कंडेय पुराण। यहां से मार्कंडेय जी बोले, ये बता रहे हैं सारा कुछ, हम यहां आ जाते हैं। मार्कंडेय जी बता रहे हैं रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। अब जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता रखा था ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, जो इनकी पूजा करते हैं वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीमद भगवत गीता में उनको क्या संज्ञा दी है, इस त्रिगुण में माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि इन्हीं पर सीमित होगी है, इसके अतिरिक्त वो किसी की बात को सुनना पसंद भी नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख चार गाली इकट्ठी दे रखी है। गीता ज्ञानदाता कहता हूं मेरी भक्ति भी ना करते। गीता ज्ञानदाता कौन है, ये ब्रह्म है, ये सर्वपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके श्रीमद भगवद गीता का ज्ञान बोल गया। आइए पढ़ें अपने ही सदग्रंथों को, जिनको हम डेली रटा करते, हम पढ़ा करते समझा नहीं करते, हमने मान रखा था इसके पढ़ने मात्र से ही मोक्ष होगा, नहीं। श्रीमद भगवद गीता में जो लिखा है वैसे करने से मोक्ष होगा, ना कि केवल पढ़ने मात्र से। पढ़ने से ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी ना हुआ, हमने पढ़ते पढ़ते कितने दिन बीत गए थे, वर्ष बीत गए थे। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो हम इन पढ़ा भी करते इन सदग्रंथों को, लेकिन ज्ञान नहीं था। आज हम पढ़ेंगे इस पवित्र सदग्रंथों को परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में, हम एक एक अक्षर समझ जाएंगे। आइएगा अब सातवां अध्याय पढ़ते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का, इसके अनुवादक हैं गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और ये सबसे अधिक हिंदू समाज में यही पढ़ी जा रही है। अब देखते हैं सातवां अध्याय, ये स्टार्ट है अथ सप्तमो अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण समग्रम संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण से युक्त सबके आत्म रूप माम मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। अब क्या कहता है गीता ज्ञान दाता, कहता है कि अब जो ज्ञान सुनाने जा रहा हूं इसके जानने के बाद तुझे कोई शंका नहीं रहेगी मैं क्या हूं। आगे देखो दूसरे श्लोक में कहा है सातवां अध्याय दूसरा मंत्र, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को तत्व ज्ञान ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या बता रहा गीता ज्ञानदाता कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा इसके बाद फिर कुछ जानने की जो आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर देखिएगा इसमें क्या बताता है तीसरे मंत्र में, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धे माने परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले सिद्धानाम साधकों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से वेती माने जानता है, तत्व से जानता है। ये क्या कह रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हजारों में से कोई ही भक्ति करना चाहता है, परमात्मा के प्रयत्न कर रहा है, उनमें से मेरे तक भी कोई एकाध ही पहुंचता है, ना तो नीचे के देवी देवताओं तक ही सीमित रह जाते हैं। आगे देखो फिर क्या बता रहे हैं, चौथा और पांचवें का इकट्ठा अनुवाद है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह है आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकार से भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव इससे दूसरी जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा चेतन प्रकृति जान। अब यहां दो से दोगे, दो प्रकृति, एक तो इन्होंने बता दिया पांच तत्व और मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ प्रकार से बनी प्रकृति। दूसरी बता रहे हैं ये चेतन प्रकृति, ये दुर्गा है। दुर्गा, अब देखो ये सिद्ध हो रहा है कि दुर्गा को भी प्रकृति कहते हैं, और आप जी को बहुत बार इन सदग्रंथों में प्रमाणित किया है, जैसे श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता पृष्ठ गोरखपुर से प्रकाशित के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कहते हैं अपनी मां के विषय में। अब पुण्यात्माओं ये सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से श्रोता प्रथम बार आते हैं तो उन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुना नहीं होता ध्यान से, और थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पुण्यात्मा शीघ्र प्रेरित हो जाते हैं, वो आते हैं। तो यहां इनको बैठकर सुनने का समय मिलता है, दो घंटे सुबह दो घंटे शाम को, तो इसलिए यहां एक विशेष विस्तार के साथ ये ज्ञान सुनाया जाता है। ये श्रीमद देवी भागवत देखिएगा सचित्र मोटा टाइप हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ने पर्याप्त है, 123 पृष्ठ तीसरा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले यदि भगवान विष्णु तुमसे ही प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। शिवे, शिवे भी कहा इसको, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये क्या सिद्ध हो गया इस थोड़ी सी पंक्तियों में, कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर एक, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। नंबर दो, दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। नंबर तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और नंबर चार, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। नंबर पांच, ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म जीव ने किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नियमित कार्य ही कर सकते। ये पांच कंसेप्ट, पांच प्वाइंट कतिशत हो गए। अब थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण। इस संक्षिप्त शिव पुराण के अंदर ये गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहां से प्रकाशित है देखिएगा, अनुमान प्रसाद पोदार इसका इनके संपादक हैं और प्रकाशक हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। यहां देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहां पांचवा अध्याय रुद्र संहिता का हम पढ़ेंगे, छठा, पांचवें के एंड को पढ़ रहे हैं। अपने पुत्र नारद की आवाज सुनकर लोकपिता महाब्रह्मा वह इस प्रकार बोले। पांचवा अध्याय समाप्त हुआ, छठा प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का 99 पृष्ठ पे। नारद ने पूछा था कि सृष्टि की रचना बताइए भगवान पिताजी ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने बताया। अब आपके रूबरू पढ़कर सुनाता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन श्रोमणे, तुम सदा समस्त जग के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा आदि कुछ भी नहीं थे। उस समय तत् सद्ब्रह्म, जिस श्रुति में सत सुना जाता है, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में, परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ सच्ची कुछ झूठी जो मैंने सुनी है वो बता रहा हूं। उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। इनका क्या मानना है कि परमात्मा मूलतः निराकार है और उसने फिर अपने आकार में आने की सोची, तब क्या बन गया, सदाशिव बन गया। फिर वो सदाशिव बन गए। अब देखो क्लियर होगा यहां से। उसने कल्पना की, अब मूर्ति की कल्पना की अपने लिए, उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति यहां देखिए, भगवान सदाशिव हैं। अब सदाशिव कौन है ये देखना जान से, ये किसको सदाशिव कहते हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस प्राशक्ति को प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित कहा है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उनकी माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नत्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर। अब ये दुर्गा के विषय में है और सदाशिव ये कौन है, ये काल है, आगे और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या सिद्ध हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं और प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में कति स्पष्ट किया गया है। गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि दुर्गा तो मेरी प्रकृति, तो मेरी पत्नी है, सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है, मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूं। प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस जीव को कर्मानुसार यहां बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं।